والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تدبر القرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ تین پہ تھوڑا سا تدبر بھی کریں گے غور و فکر کریں گے اور مجھے بہت ہی زیادہ امید ہے کہ اس چھوٹے سے غور و فکر کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آئے گا۔ سورۃ تین قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اگر ہم اس کو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے پہلے بڑی بڑی صورتیں گزر چکی اور اب تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک ایک اترنے والی کیفیت میں ہے، جیسے پہاڑی پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب اترتے ہیں تو ایک دم پھسلتے ہیں۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر کی صورت ہے۔ آپ سب مل کے بولیں گے کہ پوری کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں؟ 114۔ تو اب کتنی پیچھے رہ گئیں؟ 19، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اس صورت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ٹیکسٹ تو خود بہت ہی سمجھ آ جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ تین ہمارے کلچر میں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دو تین، تھری کو کہتے ہیں نا۔ آپ نارویجین میں کیا کہتے ہیں؟ تھرے۔ بہت سارے لوگ اس تین کو تین ہی کہتے ہوں گے، لیکن تین اصل میں عربی زبان میں انجیر کو کہتے ہیں، انگلش میں فک کہتے ہیں، نارویجین میں آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں؟ ہوتی فک تو انگلش میں ہوتی ہے نا، اسی سے ملتی بھی ہوگی کوئی لفظ۔ اور فرینچ میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فگ ہی کہتے ہیں۔ چلے الحمدللہ آسان ہو گیا۔ سورت کا پہلا ہی لفظ جو ہے وہ تین ہے۔ یہ سورت مدنی بھی ہے، حالانکہ چھوٹی صورتوں میں بہت کم صورتیں مدنی ہوتی ہیں، لیکن مدنی ہے۔ کوئی کہتے ہیں یہ مکی بھی ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا لگے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم صورت ہے کیونکہ اس میں مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، وحاظ البلد الامین۔ تو حاضہ کا لفظ ایسے لگتا ہے کہ یہ قریب کی بات ہے، اگر مدینہ میں ہوتی تو یہ کہنے کی بجائے وہ شہر کی طرف بات ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں دور کے درمیان میں ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ کفر اور اسلام کی جو کشمکش ہے اس کے دوران ہی یہ صورتیں نازل ہوتی رہیں، اور ان ساری صورتوں کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو بغیر کسی مقصد کے نہیں، ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور تم اس دنیا میں رہ کر جو کچھ کرو گے کل وہاں اس کا تمہیں نتیجہ ضرور دیکھنا پڑے گا۔ چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، اختیار دیا نا۔ چھوٹی سی مثال ہے، کسی کے پاس چوائس ہے کہ وہ آم کھائے یا نہ کھائے، لیکن ایک دفعہ اس نے آم کھا لیا، اب آم کا جسم میں جا کر جو ریئیکشن، جو اثر، جو اس کا کیلریز پروڈیوس کرنا یا شوگر لیول بڑھانا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے، ایسے ہی ہے نا۔ چلیے ایک اور مثال سمجھیں، ہم میں سے ہر ایک کو چوائس ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں یا غلط راستے پہ چلیں، لیکن جب ہم کوئی راستہ چوز کر لیتے ہیں پھر ہم اس راستے کے نتائج ضرور بھگتتے ہیں۔ آپ نے اوسلو سے درمن جانا ہے، اس کی ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے، آپ ادھر سے موس جاتے ہیں، ڈفرینٹ ہے نا۔ ایک دفعہ جب آپ کی گاڑی درمن کی روڈ پہ چڑھ پڑی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دعا مانگتے رہے اللہ مجھے موس پہنچا دے، اللہ مجھے موس پہنچا دے، پھر آپ پہنچیں گے درمن۔ اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے، زہر نہیں کھانا، میری آپ کی پوری چوائس ہے، زہر نہیں کھاؤں یا کھا لوں، एक दफा खा लिया, अब उस जहर ने जाकर अंदर जिस्म में जो फतूर बर्पा करना है, ये मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। इस बात को समझ गया। एक खास हद तक अल्लाह ताला ने अकल और समझ देकर हर इंसान को इस दुनिया में भेजा और उसको बताया कि जब तुम इस दुनिया में आओगे, पूरे शऊर और अकल और होश के साथ भेजे गए हो। ये नहीं हो सकता कि तुमको मुझे पता ही नहीं चला। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, आप इस वक्त किधर हैं? आपके पता नहीं। आप इस वक्त टाइम क्या हुआ है? आई डोंट नो। महीना क्या है आज? आई डोंट नो। डेट क्या है? टाइम क्या है? आप इस वक्त दुनिया के किस खत्ते में हैं? क्या आप इसके जवाब में नो कहेंगे? किसी एक बात पे आप कह सकते हैं कि टाइम नहीं पता इस वक्त, अंदाज़ा कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हर बात से ना वाकिफ हों। बस यही अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ताला ने इंसान को उस दुनिया में भेजने के मकसद के बारे में बताई है। आप एक सवाल 10 लोगों से पूछिए, रोड्स पे जाते हुए, ट्रेन्स में सफ़र करते हुए, अपनी जॉब्स पे अपनी कुलीग से पूछिए, स्कूल में जाते हैं तो अपने साथियों स्टूडेंट से पूछिए, व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ लाइफ? तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आज के दौर में अगर आप, मैं मुबालगे से बात ना भी करूँ ना, मुस्लिम भी और दूसरे भी, 50% लोग कहेंगे आई डोंट नो। मैंने तो जिससे भी पूछा, किसी ने अगर जवाब भी दिया, वैसे मुसलमान है कोई, आप उसे कहते हैं आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उन्होंने कहना ये बड़ी मजबी सी लगती है देखने में, कोई दीनदार मकसद ही होगा, तो वो बहुत बड़ी बात कहते हैं, नमाजें पढ़ना, हज करना, रोज़े रखना। तो अगर मैं कह दूँ नहीं, ये जवाब दुरुस्त नहीं है, फिर उनको समझ नहीं आता। और नॉन मुस्लिम्स, ख़ास तौर पर नॉर्वे, आपको पता है कि इनका लीगल रिलीजन इस वक्त एथियज़म है, ये खुद को क्रिश्चियंस भी नहीं कहते, देर इज़ नो गॉड, बस इधर रुक जाते हैं, बट अल्लाह नहीं कहते। तो जब एक इंसान अपनी किसी जगह पे आने की वजह ना जानना चाहे, उस मकसद पे नजर ना रखे, तो मुझे बताइए कि क्या वहां वो चीज जाकर पालेगा? सुबह आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। अब एक बच्चे को ये पता ही नहीं कि मेरा स्कूल आने का मकसद क्या है, तो आपको लगता है कि वहां से कोई सीख कर आएगा? नहीं, वो कैंटीन में खाना खा लेगा, दोस्तों के साथ खेल लेगा, वो कुछ शरारतें कर लेगा, पढ़ेगा नहीं। आपके हस्बैंड सुबह उठ के काम पे जाते हैं, एक मकसद है ना, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह बरकत देगा, पैसे लेकर आएंगे। मर्द घर से निकले और उसको मकसद ही नहीं पता, तो याद रखिए ऐसा बंदा लॉस्ट है जिसको अपने इस दुनिया में आने का मकसद नहीं पता। और दुनिया में आप और मैं दिन में 4 दफा अगर फ्रिज का डोर भी खोलते हैं ना, उसका भी एक मकसद होता है। हम में से कोई यहां से जल्दी से उठकर भागे वॉशरूम की तरफ, तो उस उठने और वहां जाने का भी एक मकसद ही होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने ये दुनिया किसी बगैर मकसद के पैदा कर दी हो? बस लोग कहते हैं ये मन चले का खेल है। अल्लाह कहते हैं ममा खलकना समावाती वल अर्दी लाइबीन, सूरत स्वात में भी कुछ आयात है कि हमने खेल तमाशा नहीं बनाया ये दुनिया। बस लोग कहते हैं ये दुनिया राम की लीला, लीला कहते हैं दुनिया को, और जब तक खेलने को दिल चाहेगा, एक लात मारेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फिर ये तो बहुत जुल्म है, क्योंकि इस दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों को पूरा अदल और इंसाफ नहीं मिलता, ऐसे ही है ना। बास लोग कितने नेक होते हैं लेकिन इतने दुख हैं उनकी जिंदगी में, तो आप कहते हैं ये नेक है, इनको क्यों दुख है फिर? और बास सरकश फिरौन बने बैठे, मौजी मौजा। तो इसका मतलब कि इस दुनिया में हर बंदे को उसका हक नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक नई दुनिया होगी जहां लोगों को उनके दुनिया में किए हुए कामों का बदला दिया जाएगा। यह है सूरत 3, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कस्में हैं मुस्तकिल, अगर आप इसके टेक्स्ट पे जरा सी नजर जमाएं तो एक एक कसम के अंदर कई अंबिया कराम है। कैसे, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की, वतूरी सीनीन और तूरे सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन और इस पुरामन शहर यानी मक्का की। 1, 2, 3, 4 कसमें। आज हमारे साथ कुछ नए साथी भी हैं, हो सकता है उनको ये चीज़ फायदा दे दे कि कसम क्यों खाई अल्लाह ने, हम तो पढ़ चुके पीछे बहुत दफा। हम कसम खाते हैं लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम सच्चे हैं, ऐसे ही है ना। कोई अगर हमारी बात का एतबार ना करे तो हम कहते हैं अच्छा भी मैं कसम खा के तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। अल्लाह सुबहाना ताला की कसमें यकीन दहानी के लिए नहीं है, बल्कि ये कसमें शहादत और गवाह बनाने के लिए, इज्जत देने के लिए। अब देखते हैं कसमें किस किस चीज़ की हैं। बाजार में जब भी बचपन से ये सूरत पढ़ती थी मैं कहती थी फ्रूट वाली सूरत, सब्जियों वाली सूरत। तीन इंजीर है, फल है, बहुत मज़े का होता है। मेरा हाल है मेरी तरह आप में से बहुत सारों का फेवरेट होगा। और अगर कभी आपने फ्रेश खाया, इतना मोटा ऐसे होता है जैसे अमरूद, उसके अंदर इतने लंबे लंबे बीज होते हैं ऐसे सिरे सिरे, नहीं खाया तो ज़रूर खाए, आपको अल्लाह पे बहुत प्यार आएगा। फिर जैतून, नहीं 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 हम नहीं खाते। पाकिस्तानी लोग अक्सर जैतून को देख के नाक मुँह चढ़ाते हैं, नहीं नहीं हमारा टेस्ट नहीं है। तो मैं कहती थी इसमें कोई सब्जियों की बातें, कोई इसमें फल की बातें होंगी, क्योंकि नाम पढ़ते ही शुरू में ऐसी चीज़ें, अकल की किसी दूर की घुत्ती में भी ये बात कभी नहीं आई थी कि यहाँ तीन क्यों है और जैतून क्यों है। फिर गौर व फिक्र और तदब्बुर और अल्लाह के नबी की बातें और तफसीर को पढ़ने के बाद समझ आई एक हकीकत, वो भी इंशाल्लाह आगे आती है तो बताती हूँ। पहली कसम तीन की, दूसरी जैतून की, तीसरी कसम है बतूर सीनीन, तूर सीना की। ये वो पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से कलाम हुआ था और कोहे तूर पर ही बुलाकर आपको तौरात दी गई थी। एक किसी भी कौम को उभारने का फैसला हुआ था तूर पे। अल्लाह ताला अंबिया कराम को पर तन्हाइयों की तरफ ले जाता था, लोगों की भीड़ में वो बात समझ ही नहीं आती जो तन्हाई में समझ आती है। हम सब बचपन से पढ़ते आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के मिलने से पहले ही तन्हाई पसंद हो गए थे। गारे हिरा में जाकर कई के दिन रियाजत करते, फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको सत्तू और कुछ खाने की चीज़ें देने जाती। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त आप यहाँ एक इल्मी माहौल में बैठे हैं, इमेजिन कीजिए, हो सकता है कल इस वक्त आप किसी पार्टी में थे, सुबह हो सकता है आप सारी फैमिली के लोग किसी खाने पे मधु थे। अब जो बात समझ आ रही है, अगर उसी माहौल में वो बात की जाती तो समझ आती? नहीं आती। याद रखिए कि इंसान की ज़िंदगी में पूरे दिन में कुछ मिनट या कुछ घंटे अपने लिए होने चाहिए, जिसमें वो कहते हैं ना कि डूब के पा जा अपने मन में सुराख़े ज़िंदगी। हम दुनिया में जब बहुत सोशलाइज करते हैं, हर वक्त दूसरे, हर वक्त एक ज़िंदगी में भगदड़ मची हुई है, और नमाज़ें भी जो हम पढ़ते हैं बीच में अल्लाह की रहमत से, वो भी पता ही नहीं होता कि हंडिया जल रही है या चावल उबलने वाले हैं। हर रकत के अंदर एक अलग काम होता है, ऐसे ही है ना। तो पहली बात, अपने लिए कुछ वक्त अलग करें, ये आपका और मेरा हक है। आप माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, जो भी रिश्ता निभाइए, ये भी सवाब है, ये भी इबादत है। लेकिन अपने सारे रिश्तों से बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत और बड़े यकीन से कुछ वक्त की छुट्टी ले लें, इसमें मुझे कोई नहीं बुलाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशी से आपको इजाज़त देंगे, ये हमें यकीन होता है तो फिर ही लोग देते हैं। चलिए, अल्लाह सुबहान तआला यहाँ तूरे सीनीन के बाद जो चौथी कसम खाते हैं वो हाजल बलदिल अमीन। बलदिल अमीन खाना काबा की वजह से मक्का का दूसरा नाम है। अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई, क्यों खाई? अब ज़रा सा एक छोटा सा जवाब सुनिए, जिसको आप तफसीर की ज़ुबान में जवाब कसम कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, तो आखिर सुनने लगेगा किस बात पे खाती हो, ठीक है? तो जिस बात पे कसम खाई जाती है ना, उसको जवाब कसम कहते हैं। तो आप जवाब कसम सुन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इन कसमों की वजह समझ आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हज़ल बलदिल अमीन। इन चार इतनी कसमें बड़ी बड़ी मौक़त करने के बाद इन कसमों को जो जवाब कसम है वो है आपके मेरे लिए। लक़द ख़लक़ना लिल्इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, अशरफुल मखलूकात। इंसान अल्लाह ताला का मास्टरपीस है, अल्लाह ताला का बेस्ट क्रिएचर है दुनिया में। इंसान की तकवीम बड़ी प्यारी है। फिर क्या होता है? सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन। फिर इसे उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से नीच कर दिया। ये है डिक्लाइन। ये क्या है? जब बंदा दो बातें भूल जाता है, लिख ले, इंसान अपनी असल के एतबार से बेहतरीन और आला। अभी मैं इसकी बैकग्राउंड बताऊंगी तो आपसे ज्यादा ये बच्चियां मेरी बात को समझेंगी। क्या जिस इंसान को अक्स ने तकवीम से नीचे उतारा, तभी तो फिर उसको बंदरों की औलाद बना दिया। डार्विनिज्म या डार्विन की थ्योरी का बिल्कुल ऑपोजिट है ये सूरत। अभी इस पे बाद में बात करेंगे। अभी मेरे आपके लिए बड़ी सिंपल सी बात है। ह्यूमन बींग इज अ वेरी ऑनरेबल क्रिएशन। कभी अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, कभी अपने आप को हकीर ना समझें। कई लोग हैं ना, क्या कहते हैं, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता सिफत। अल्लामा इकबाल ने इसको भी कहा है कि फरिश्तों को वो मुकाम कहाँ हासिल है जो इंसान को हासिल है। हम सब बेहतरीन मखलूक हैं, आजमा के देख लीजिए। देखिए, इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। इंसान के लिए दुनिया की हर चीज इस वक्त हरकत में है। रोज सूरज आता है और जाता है, किसके लिए? एक दिन सूरज ना आए तो हम सबको पता लग जाए कि वो किसके लिए आता था। हजारों नहीं, लाखों इंसान फौत हो जाए, लेकिन रोज हजारों इंसान जाते हैं, कुछ भी नहीं होता किसी को। ना सूरज की रोशनी कम होती है, ना चांद को ग्रहण लगता है। तो जिसके लिए इतनी प्यारी कायनात सजाएगी, वो बड़ा अहम ही होगा। देखिए, आप किसी को इज्जत देते हैं ना, जब उसके आने पे घर को साफ करते हैं, उसको वार्म वेलकम करते हैं, घर साफ, कपड़े साफ, खाना अच्छा। आप कहते हैं हमें आपके आने की बहुत खुशी हुई। और हम भी कहीं जाकर अगले को यही बातों से एहसास दिलाते हैं कि हम आपके घर बड़ी खुशी से आए हैं। अल्लाह ने इंसान के आने से पहले इस दुनिया को इतना प्यारा सजाया और फिर साथ ही कह दिया कि खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीयन। सूरत बकरा में बिल्कुल शुरू में याद आता है, पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ इस जमीन में है, और जिसको शायर ने भी कहा कि सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के लिए। सब कुछ तेरा बर तू अल्लाह का, ये दुनिया तेरे लिए लेकिन तू आखरत के लिए। ये बुनियादी मकसद था। और दूसरी वजह, पहली वजह समझ गए कि इंसान को अल्लाह ने आसन तकवीम क्यों दी, कि उसको सारी मखलूक से अच्छा बनाया, अकल दी, शऊर दिया। हालांकि अब देखिए, जानवर भी देखता है, इंसान भी देखता है। जानवर भी सूंघता है, इंसान भी सूंघता है। वो भी खाता है, ये भी खाता है। वो भी सोता है, ये भी सोता है। वो भी बच्चे पैदा करता है, ये भी पैदा करता है। सवाल पैदा होता है, फिर फर्क कहाँ है? फर्क शऊर का है। जानवर में अकल नहीं है, जिस खूंटे पे बांध दिया बन गया। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने आसने तकवीम बनाया। और तकवीम की तीसरी फॉर्म, ये बस समझ लीजिए, हर इंसान, आप और मैं तो हम सब माशाल्लाह एक ही कल्चर के लोग हैं। आप में से तो बहुत सारे लोग एक ही फैमिली के भी हैं। 90% आपका रख रखाव, उठन बैठन एक जैसा होगा। फर्क पड़ता है, हर बंदा अपने बैकग्राउंड से देखता है। आप अपने दायरे को जरा सा वसी करके भी देख लें, हम सब इंसान बुनियादी तौर पर एक वाहदत में पिरोए हुए हैं। और वो क्या है, समझ लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रूहों की शक्ल में थे, हम दुनिया में नहीं आए थे, अभी नई नई दुनिया बनी है। अल्लाह ताला ने आदम की पुश्त पे हाथ फेरा, यानी पुश्त कहते हैं बैक को, बैक पे हाथ फेरा। कैसे फेरा मुझे आपको इससे क्या लगे, बस हमारा ईमान है कि जो बात कहेगी वो सच है। फरमाया, क्यामत तक पैदा होने वाले हर बच्चे की रूह वहां खुले मैदान में रेत के जर्रों की तरह बिखर गई। अब मुझे आपको याद नहीं है, लेकिन आपके साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। सब वहां जमा हो गए। हदीस में आता है, जुनूदुम मुजन्नदा, लश्करों के लश्करों की सूरत है, इतने ज्यादा लोग थे। जाहिर आप सोचिए ना, शुरू से लेके क्यामत तक आने वाले सारे लोग जमा कर दिए जाए तो वो कितने होंगे। और उस दिन तो शुक्र है जिस्म नहीं थे, सिर्फ रूहें थी, एक जर्रा था। क्यामत के दिन फिर यही होगा, वह जमा ना को अव्वल अव्वल आखरीन। खैर, अब सब वहां पहुंच गए। आप अपना वो वादा याद कर सकती हैं, नाम गलत ना ले दूं तो इमाम दहाक कहा करते थे, आज भी मुझे वो दिन और वो वक्त और वादा ऐसे ही याद है कि मैं उसको अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ। बस बच्चों की मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, उनको अपने बचपन की सारी बातें याद होती हैं। कुछ को तो ये भी पता होता है, जब मैं पैदा हुआ था तो फूफो ने क्या दिया था और मामू ने क्या दिया था, मुझे वो दे दीजिए। कुछ बच्चे माओ का हिसाब भी लेते हैं। लेकिन इस वादे को जो अल्लाह ने सबसे लिया था, ये बताओ कि तुम जब दुनिया में जाओगे किस को अपना रब मानोगे? अलस्तु बि रब्बिकुम, गालिबन 175 आयत का नंबर होगा सूरत आराफ की, नंबर चेक कर लीजिएगा, लेकिन सूरत आराफ में यह आयत मौजूद है, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने कहा क्यों नहीं, कालू बला, वाई नॉट। अच्छा यहाँ मज़े की बात नोट कीजिए, ये सिर्फ हम मुसलमानों ने नहीं दिया, हजरत नबी सल्लम की उम्मतियों ने नहीं दिया। पहला बंदा जो दुनिया में आया वो आदम, और आखिरी जो आएगा वो पता नहीं किस बदतर मखलूक में से होगा। हर बंदा बाद में उसने कोई भी रिलीजन अडॉप्ट किया, वहाँ हर बंदा अल्लाह को ये वादा देकर आया कि दुनिया में जाऊँगा और तुझे रब मानूंगा। अल्लाह ताला ने इस इंफॉर्मेशन को उसके माइंड के डाटा में डाल दिया। जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वो कंप्यूटर में चीज़ें डाल देते हैं, बस वापस जॉब। अब वहाँ से रूहें असेंबल होकर अपने वक्त के साथ साथ दुनिया में भेजी जा रही हैं, और दुनिया में हर रूह जब आती है, आपने फरमाया कुल्लू मौलूदिन, हर बच्चा दुनिया में जब पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है, और वो फितरत क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। आप सब माशाल्लाह जानते हैं सूरत मरियम में भी यह बात मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम किया था, पता ही है ना हम सबको। पहला जुमला क्या बोला था उन्होंने, सूरत मरियम का बिल्कुल दूसरा रुकू शुरू होता है, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये बात किसने पढ़ाई, बच्चों को तो सिखाना पड़ता है ना, कितने बच्चे हैं जिनको कलमा सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है ना, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितना पढ़ाया जाता है। वो एक बच्चे की किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी थी, टीचर पढ़ाती है, बोलो पहला कलमा, पहला कलमा तैयब, अब बच्चा नहीं बोल रहा, बोलो का तैयब नहीं बोलते, क्यों, मामा कहती भाई कहते हैं। तो माँ को तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ईसा को किसने सिखाया, ईसा को वो वादा अल्लाह ने सिखाया था। आज भी आपकी मेरी मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यूस बुद्धास हिंदूस दुनिया के हर मजहब को मानने वाले की गोद में जो बच्चा, अगर उसको बुलाया जाए और वो बोल पड़े मिरेकुलसली मौजाना तौर पे, तो वो यही कहेगा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये है फी अहसनी तकदीम। अब इसको आसान कर देती हूँ, इंसान की फितरत में अल्लाह ने तौहीद की पहचान डाल दी। इसी वादे की वजह से आज दुनिया के हर बंदे पे हुज्जत है कि वो इस्लाम को समझे, अल्लाह को एक माने। लेकिन सुम्मा रदद ना हो असफला साफिलीन, अब आगे चलें, इंसान नीचों में से नीचा कब होता, सबसे पहला तरीका तौहीद छोड़ के कुफर या शिर्क में मुब्तला हो जाता। आपने फरमाया हर बच्चा फितरत पे होता है, लेकिन फिर जो घर का माहौल होता है ना, बच्चा वैसे ही हो जाता है, और ये सच है। शुरू में तो हम भी इसीलिए मुस्लिम थे कि हमारी माँ मुस्लिम है, शुरू से कान में अजान दे दी गई, और दिस एंड दैट। अब आप ज़रा इस चीज़ को समझिए कि इंसान तो बहुत ही तौहीद पर दोस्त था, माहौल ने उसको मुशरिक बना दिया। अल्लाह ताला ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए ये चार कस्में इधर खाई हैं। कैसे, आप देखिए कि वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन की बात करके अल्लाह सुबहान ताला ने किस नबी की बात की है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लहम में पैदा हुए थे, और वहाँ का की इंजीर, वहाँ का ओलिव या जैतून बहुत ही मारूफ है। इसी तरह एक रिवायत है बनी इसराइल के नाते से कि जब जन्नत में से आदम और हव्वा का लिबास उतर गया था ना नाफरमानी की वजह से, तो उन्होंने इंजीर के पत्तों से जिस्म को छुपाया था। कहने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन चार कस्मों में बड़ी बड़ी शख्सियात का तस्करा कर दिया, जलीलुल कदर अंबिया, व तीन से हजरत आदम और हव्वा, और साथ ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, व तूरी सीनी, तूरे सीना से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके इर्द गिर्द के लोग हजरत हारून अलैहिस्सलाम, व हासिल वलदिल अमीन, अल्लाह के नबी सल्लम। दुनिया की चुनी हुई बड़ी बड़ी शख्सियात का तस्करा करके अल्लाह ताला ने यह बात बता दी, तुम कैसे कह सकते हो कि इंसान बंदरों की औलाद है। अब यहाँ थोड़ी सी बात मैं आज के दौर के नाते से करूँगी। आप सब ने डार्विनिज्म का नाम सुना ही होगा, बचपन से हमें पढ़ाते हैं, इस पर पीएचडियाँ होती थी, हालांकि आज प्रूफ हो गई कि गलत थी। डार्विन एक रिलीजियस शख्स था, क्रिश्चियन था बाय प्रोफेशन, बाय रिलीजन, मजहब की तरफ बहुत रुख था। लेकिन जब दुनियावी तरक्की करता है ना इंसान, तो बाद दफा मत मारी जाती है। इसने एक थ्योरी क्रिएट की कि इंसान बंदरों की इवॉल्व फॉर्म है। पहले बंदर बना, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी दुम चली गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कद बड़ा हो गया, और होते होते वो फिर इंसान बन गया। सुनी हुई ये बात? और हैरत की बात है कि इस बात जिसकी कोई ना सर ना पाँव, लोगों ने डिग्रियां ली, लेकिन बाद में वो सब जाया हो गया। आज इंसानियत को ये साबित करवाया जा रहा है कि इंसान बंदरों की नस्ल से है। आपने एक लफ्ज़ इंग्लिश में सुना होगा जुमला, बल्कि मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान एनिमल नहीं है। ये गलत जुमला है, कहते थोड़ा सा फर्क है बस, जरा मुहज़्ज़ब किस्म का जानवर है। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान को जानवर क्यों साबित किया जा रहा है? इस पे बात कर लें, बाकी छोड़ दें, मुझे उस लंबी बात के जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ वजह क्या है? वजह यह कि तुम एक दफा मानो कि हम बंदरों की नस्ल से हैं, जानवरों की नस्ल से हैं, तो फिर जानवरों वाली खूबियां इंसानों में ले आएंगे। मसलन जानवर कपड़े नहीं पहनते, तो फिर इंसान को भी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जानवर फ्री सेक्स के तस्वुर के साथ है, तो फिर तुम भी फ्री सेक्स रखो। ये क्या शादी करो तो फिर ताल्लुक बनता है और एक से ताल्लुक सारी उम्र रखे? ना ना ना, रॉन्ग। और जानवर किसी हद तक अपने बच्चों को साथ रखते हैं, लेकिन कोई जानवर अपनी माँ और बाप को साथ नहीं रखता। आज ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द सोचे बनाकर पेश कर दी गई कि बच्चों का तो ख्याल करो क्योंकि तुमने उनसे अपनी नस्ल चलानी है, पर बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ो, बुजुर्गों का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा कि एक दफा आप मान लें कि आप ठीक है, आपके दादा जानवर थे और आपकी दादी भी जानवर थी, इसके बाद फिर इंसानियत को इतना नीचे गिराया जाता है कि इंसान जानवर भी नहीं रहता। सूरत अल अराफ में अल्लाह ताला कहते हैं, कल अनाम बल हम अदल, जानवरों से भी फिर इंसान नीचे गिरता है, बल्कि उससे भी भटका हुआ। कैसे? आप देखिए, कुत्ता कुत्ता अगर कुत्ता है तो कोई बुरी बात नहीं है, पर जब इंसान कुत्ता बनता है ना हिर्स लालच में, तो वो कुत्ते की खूबी लॉयल्टी और अल्लाह का हक पहचानना या अपने मालिक का वफादार होना, इसको भी भूल जाता है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया था। आप और मैं इस दुनिया में ऐसे नहीं आए, बहुत बड़ा मकसद था, और वो क्या था? इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। आदम और इबलीस का तذکرہ कुरान पाक में शुरू में ही आ जाता है। अल्लाह ताला ने बड़े मान से फरिश्तों के सामने ये चीज रखी थी, वइस काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कह फरिश्तों मैं इस जमीन में एक इंसान बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों को समझ नहीं आई कि जरूरत क्या है। कहने लगे, तेरी तस्बीह तो हम करते हैं, तेरी तकदीस भी करते हैं, मतलब ये कि बिस्मिल्ला भी पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, तो तुझे एक और मखलूक की क्या जरूरत थी? उस वक्त फरिश्तों को ये बात नहीं समझ आई, और वो क्या है कि वलकद खलक नल इंसान नफी अहसनी तकवीम। ये है पांचवी चीज अहसनी तकवीम की, कि इंसान दुनिया में अल्लाह के क्रिएशन प्लान में रंग भरता है। नबूवत का ताज इंसान के सर पे होगा, कोई नबी जिन्नों में से नहीं आया, जानवरों में आना तो बात ही नहीं है। इंसान है जो इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी को नाफिज करता है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो इंसान पढ़ता है, और इसको इस दुनिया में इसका झंडा गाड़ता है तो वो इंसान गाड़ता है। इसीलिए फिर फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है, गैरु ममनून। कभी आप एक मिरर रखकर उसके सामने एक और मिरर रखें और थोड़ा डायगनल रखें साइड से, आपको उस मिरर में से मिरर्स की एक लंबी कतार नजर आएगी, करके देख लीजिएगा, खत्म ही नहीं होता, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन उसके रिफ्लेक्शन से एक चेन रिएक्शन में बदल जाता है। अजरुन गैरु ममनून क्या है? थोड़ी सी जिंदगी में ईमान लाकर अच्छे काम किए, अल्लाह की मर्जी को माना, अल्लाह ने ना खत्म होने वाला अजर उनको दिया। फमा युकज्जिबु का बादु बिद्दीन, बस है नबी, इसके बाद कौन है जो जजा सजा के मामले में तुमको झुटलाता है? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? क्या समझ आई बात? खुलासा कर देती हूँ, अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया। चलिए हम अपने आप से पूछते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? वो शायर कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आप देखिए कि हम सब जी रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। बस लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है? कैरियर बना ले। बस आप देखिए कि यंग लड़की या लड़का, उनको इस वक्त ये लग रहा होता है पढ़ लूँ, मेडिकल कर लूँ, 5 साल यूनिवर्सिटी के, फिर हाउस जॉब, कुछ भी कर लूँ ताकि मेरा कैरियर बिल्ट हो जाए। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए ये मकसद नहीं है, ये रास्ता है। ये अचीवमेंट्स जो होती हैं ये सारी बंदा जिंदगी में इसलिए लेता है कि इंसान उन उन जगहों पे पहुंच कर लोगों को अल्लाह से जोड़ सके। यानी अगर मुझे फिर मौका दिया जाए ज़िंदगी में तो मैं ज़रूर मेडिकल करूँ, मैं ज़रूर पढ़ूँ। बट आप मेडिकल करने के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बदल जाएंगे। एक तो मैं अंदर से इंसान को झांकूँ, जो डॉक्टर्स हमें कभी नहीं पास खड़ा होने देंगे ऑपरेशन करते वक्त। देखो तो सही कि अल्लाह ने इंसान को अल्लाह ने कितनी प्यारी तकवीम में पैदा किया। आप देखिए अंदर से जिस्म कैसे जकड़ा हुआ है ना, हर चीज़ उसकी जगह पे। और दूसरी, मैं डॉक्टरों के बीच में जाकर उठूं बैठूं और मैं उनको अल्लाह से जोड़ूं। आज भी आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे इस्लाम पे रिसर्च हो रही है, कुरान पाक की आयतों पे रिसर्च करके इन्वेंशंस हो रही हैं। लेकिन दुख की बात क्या है कि ऐसी कुछ जगहों पे मुसलमानों को दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं है। क्यों? उनका पता है एक अल्लाह वाला मुसलमान इधर आ गया तो हम सबको मुसलमान कर देगा। क्योंकि इस्लाम एक सच्चाई है, एक हकीकत है। ये ऐसा भी नहीं है कि बस आप किसी को कुछ कह दें और उसके बाद आप उससे अपनी मर्जियां मनवा लें। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानें। आप देखिए कि खड़े खड़े कोई मौत आती है ना। कल एक क्लिप देखा, एक बहुत अच्छे स्कॉलर है तो वो अपने किसी साथी का वाक्या बता रहे हैं, किस तरह वो शख्स मस्जिद नबवी में था, रोज़े में खड़ा था, रियाजुल जन्ना में उसने 2 घंटे गुजारे, उससे पहले हरम में था, और पूरा दिन वो इसी हालत में गुजार कर रात को जब नमाज पढ़ता है, मगरिब की अजान हो रही है और एकदम उसके चेस्ट में पेन होती है और वहाँ वो खड़े खड़े गिरा और विद इन फ्यू मिनट्स उसकी डेथ हो गई। तो वो जो स्कॉलर थे जो उसको जानते थे वो अपने साथी की बात बता रहे थे कि वल्लाह दिस इज नॉट बाय लक। हम कहते हैं ना हाय मक्का में मौत आए, हाय मदीना में मौत आए, तुक्का लग जाए। नहीं, ये तुक्का नहीं लगता। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी जिंदगी को एक्सप्लेन किया कि वल्लाही मैं इस शख्स को देखता था कि ये फजर के लिए मस्जिदों में दौड़ता था, मैं इस शख्स को मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ने हुए 2-2 घंटे देखता था, फिर इसने हिफ्ज़ शुरू किया, फिर अपनी फैमिली में गया, फिर वहाँ एक हिफ्ज़ का मदरसा कायम किया। कहता है वल्लाही वल्लाही बाय गॉड मैं कसम खाता हूँ कि इसने अल्लाह से ये मौत मांग मांग के लिए। आज हमें उसकी मौत पर रश आ रहा है, लेकिन जो वो ज़िंदगी में करता था वो हम नहीं करते। याद रखिए कि अल्लाह जब हमें आपको चुनता है ना तो उसके पीछे कुछ क्राइटेरियन होता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है कि अल्लाह ताला ने मरियम को चुन लिया। वजह क्या थी? कि मरियम की जवानी बड़ी पाकीज़ा थी, वो उस गंदगी से पाक थी जो अमूमन उस उम्र में यंग लड़कियों में आ जाती हैं चीज़ें। अल्लाह ने उनको मेहराब में ऐन इबादत की हालत में चुन लिया। हम कहते हैं हम बाज़ार में खड़े और फरिश्ता आए और कह दे कि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया, ये नहीं होगा। हम सब अपनी ज़िंदगी को समझें, पहचानें और याद रखिए कि ये चंद दिन की ज़िंदगी तो चली जाएगी लेकिन नज़र ख़त्म नहीं होगा। आपको रश करता कभी किसी शख्स पे? मुझे आता है, पूछे किससे? एक तो अम्बिया कराम है ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और सहाबा कराम भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को देखा। लेकिन मुझे जो रश करता है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पे आता है। कोई मसलक, कोई जमात, कोई गिरोह, किसी भी सोच का हो, सही बुखारी से फ़ायदा ज़रूर उठाता है। हर एक के मदरसे में आपको मिलेगी। क्यों? फलहुम अजरुन गैरु ममनून, इमाम बुखारी की अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 90,000 लोगों को बिल मुशाफा, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, फेस टू फेस 90,000 लोगों को अपनी किताब बुखारी पढ़ा दी थी। एक एक नशिस्त, एक एक सिटिंग गैदरिंग, इतने ज्यादा लोग होते थे कि वो अपनी बात करके चुप हो जाते, फिर पीछे 10 लाइनों के पीछे कोई बोलता, और इस आधे आधे घंटे तक बात पीछे पहुंचती, इतना रश होता था। सवाल ये है कि जब मैं मरूंगी मेरे पीछे क्या है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, इज़ा मात अल इंसान इनकते अमलहू, जब इंसान मर जाता है तो उसका नामे अमल मुनकते हो जाता है, हाँ मगर इल्ला मिन सलास। तीन चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी इंसान को फ़ायदा देती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़, इंसान ने कोई नेकी का काम किया, सदकतुन जारिया, कोई सदका जारिया का काम किया। उसकी मिसाल अगर आपको दूँ तो उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, करोड़पति साहबी थे, मिलियनेरियन कह ले आज के दौर में, अपनी जिंदगी में एक बाग खरीदा, फिर उसको वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे। उस बाग की जितनी आमदन आती थी ना, वो सारी जमा होती गई। बाद के दौर में जब जमाना आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा कि इन पैसों का एक अकाउंट खोल देते हैं, जमा तो करनी है, पहले तो वैसे ही जमा करते होंगे, उसको फलाहो बहबूद में लगाते थे। फिर क्या हुआ, जब बैंकिंग सिस्टम बना, आज भी सऊदी अरब में हजरत उस्मान गनी के नाम पे वो अकाउंट मौजूद है। हर साल उस बाग से जो फसल उगती है ना, तो बिकती है ना, खजूरें हैं या जो भी, और मुझे इत्तेफाक हुआ वो बाग देखने का। हम अपने सफर में जब ज्यारतों पे गए तो हमारे उस्ताद हमें खुद वहां लेकर जाकर दिखाया कि ये है वो बाग। जो सबसे बड़ी बात है, उलमा की कमेटी बैठी है कि उस्मान गनी के इन पैसों का करें क्या, और आप पता एंड पे क्या हुआ, फैसला ये हुआ कि इनके इस पैसे को हरम की तौसी में इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको हर साल हरम पहले से भी खूबसूरत और बड़ा दिखता है ना, इसमें उस्मान गनी का पैसा लग रहा है, ये है अजरुन गैरु ममनून। दूसरी चीज, इल्मुन युन्तफ़ौ बादहु, वो इल्म किसी को सिखा गया जिससे बाद में नफा लिया जाए। इसमें मिसाल ले लीजिए हजरत ये इमाम बुखारी, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिर्फ 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यानी आपकी डेथ से सिर्फ 3 साल पहले आपको मिले थे खैबर की जंग के बाद, और उसमें फोकस्ड होकर, डेडिकेट होकर इतना इल्म ने हदीस ले लिया कि उठ के बाहर ही नहीं जाते थे, शादी नहीं की आपकी जिंदगी में कि कहीं मैं घरदारी में पढ़कर इस इल्म से महरूम ना रह जाऊँ। जो इल्म आज हमारे लिए बिल्कुल एक चेंज है, रेजगारी है, कीप इट, वी डोंट नीड इट, उस इल्म के लिए भूखे रह रह कर पढ़ते थे और बेहोश हो जाते थे भूख की वजह से। लोग समझते थे कि अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ा है, एपिलेप्सी के दौरे पड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं ये नहीं था कह सकता कि लोगों मुझे भूख लगी हुई है। याद रखिए, इल्म दुनिया की सबसे प्यारी दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। और तीसरी चीज जो मेरे ख्याल है हर माँ के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, और वो क्या है, वलदुन सालेहुन या दो लोग, बच्चे जो बाद में उसके लिए नेक काम करें, दुआएं करें। चलिए मैं और आप खुद से पूछते हैं, किसी को कहने, देखने, सोचने की जरूरत नहीं, हम अपने पीछे क्या विरसा छोड़ के जा रहे हैं, वट लेगेसी वी आर लीविंग बिहाइंड, वट एम आई लीविंग बिहाइंड। क्या हमारी औलादें हमारी कब्रों में जन्नत की खिड़कियां खुलवाएंगी, क्या हमारी औलादों की दुआओं की वजह से कब्र में हमारे दर्जे बुलंद होंगे, क्या हमारी औलादें जन्नतों में हमें ऊंचा करने का जरिया बनेंगी। इंशाल्लाह बनेगी, अगर जिंदगी में हमने इनको इस रास्ते पे लगाया हो जिसका तذکرہ इधर लजी ना मनु वामिलु सालेहात। औलाद का पर्चा बड़ा मुश्किल है, क्यामत के दिन बहुत सारे लोगों ने फेल होना है अगर तो औलाद के पेपर में होना है, औरतों ने औलाद में और मर्दों ने माल में। ये दोनों चीजें 28वें पारे में डिटेल से आती हैं। मर्दों का फितना माल, हलाल से आए कि हराम से, नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, जुम्मा छोड़ा के छोड़ा के पढ़ा, और औरतों का फितना औलाद, बच्चों के काम करती रही नमाजें छोड़ दी। अल्लाह ताला कहते हैं याद रखो कल क्या होगा, इसको आज सोच के रखें। जाएंगे तो सभी ना, रश्क नहीं आता उन लोगों पे कि जिनके जाने के बाद लोग कैसे दुआएं करते हैं। मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ जाता है। बहुत साल पहले हम लोग कराची में थे, वहाँ एक घराना बहुत मारूफ था, भाभी हाउस के नाम पे। हर संडे वहाँ दर्स होता था, और मेरे लिए हमारे भी दिलों में ईमान का बीज उन्हीं दरसों से पड़ा। किस्सा मुख्तसर, उनके जो बड़े थे बहुत नेक शख्स थे, उन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ बनाया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जब बाप की डेथ हुई, सारे शहर के बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, क्योंकि बड़े दीनदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे वो। मस्जिद, वो जगह तक मुझे अभी तक याद है। बड़े इमाम आए जिन्होंने जनाजा पढ़ाना था, लेकिन एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ 18-19 साल का उनका बेटा, बिल्कुल अर्ली टीनेज, आगे आ गया, अंकल मैं अपने अब्बू का जनाजा पढ़ाऊंगा। बाहर लगता कि हाँ, इतने बड़े आलिम को छोड़ के ये बच्चा पढ़ाएगा। उन्होंने कहा मोसर, इससे अच्छा और क्या होगा। उसके बाद जो उस बच्चे ने जनाजा पढ़ाया, माइक पे पढ़ रहे थे, पूरी बस्ती, जो इलाका था, उसकी गलियां रो रही थी। जब वो बच्चा रो रो के कह रहा था कि रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। हम अपने बच्चों की दुनिया बनाते रहते हैं, और उनकी और हमारी आखिरत बिगड़ जाती है। हम अक्सर इस गम में जीते हैं कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सोचिए, अगर उनमें से कोई मर गया तो उनके साथ क्या होगा। मौत तो किसी लम्हे भी आ सकती है। अपनी जिंदगी में अपनी इस फसल को हरा कर ले। आपकी सबसे कीमती खेती खेती आपके बच्चे हैं। एक करंट अकाउंट आप खोल के जाएंगे। बस दफा जिंदगी में कुछ गलतियां की होती हैं इंसान ने, फिर जरा सा शऊर आया, इल्म सीखा, माफी, और एक दिन शर्मिंदगी से माफी मांगी, आगे ना करने का इरादा किया, अल्लाह माफ कर देता। बट आपका अकाउंट तो क्लोज हो गया गुनाहों का, नाफरमानियों का, लेकिन औलाद के अकाउंट तो 4-5 पीछे छोड़ गए, उसका क्या बनेगा। फिर वो बच्चे कहेंगे, अब आपने तो गुनाह करके तौबा कर ली। वो गुनाह तो कहते ही नहीं, वो तो कहते फन, इट्स फन। याद रखिए, फी अहसनी तकवीम से गिरन के सुम रदत ना फसफला साफलीन होना क्या है। एक एंगल समझ ले कि बंदे को गुनाह में मजा आने लगे, अपनी खुशी में अल्लाह को नाराज करने लगे, और फिर दुआएं उसी रब से ही मांगनी है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है। तो आज वक्त है हम सबके पास। अब आप में से बहुत सारे आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, छोटे बच्चों को तो बंदा समझा ले, बड़ों का क्या करे। है ये क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर की औलाद माशाल्लाह उनके कद के बराबर तो हो ही चुकी है। तो उसका एक ही जवाब है, उनसे माफी मांग लें, प्यार से हाथ थाम के, कि बच्चों मुझे माफ कर दो, मुझे खुद समझ नहीं थी, खुद अकल नहीं थी, तुम्हें क्या देती। वरना याद रखिए, इस वक्त मुंह कड़वा नहीं करना चाहती आपके साथ वो वाकया शेयर करके, आज के दौर का लेटेस्ट रुझान क्या है। मुस्लिम औलादें ये बात कह रही हैं कि वी आर नॉट मुस्लिम। पहले होता था, जो नमाज नहीं पढ़ता था, लोग कहते थे बड़ा बेदीन है। ऐसे ही था ना, लड़की ने पर्दा ना करना, पर्दे से मुराद वो काला बुरका होता था। ये नहीं थी जरूरत के बाल खोल के वो बगैर दुपट्टे के फिरे, यानी जब दुपट्टा बुरका नहीं पहनती थी तो लोग कहते थे ये बच्ची बेपर्द है। ऐसे ही था ना, ये पुराने दौर की बेदीनी थी। कोई मर्द है तो अगर वो दाढ़ी कटवाता है, मूछे रखता है, कहते थे बेदीन है, बूढ़े बाबे दादे नाने डांटते थे ना। आज के दौर की बेदीनी क्या है। ये नमाज रोजा तो हम सारी कबूल कर चुके हैं कि बच्चों ने पढ़नी इकट्ठी है रात को, या सिर्फ जुम्मे के जुम्मे, हम इस पर बड़े खुश हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। आज के दौर का फैशन क्या है, आई एम नॉट मुस्लिम। वल्लाह ही मैं ये बात पूरे दलाइल के साथ आपके सामने रख सकती हूँ, ये ट्रेंड है, आई एम गे। सबको पता है अब गे क्या होता है, ये फैशन है, ट्रेंड है। ओ आई एम गे, ओ यू आर नॉट गे, ओ हो बेवकूफ बुद्धू पागल, यू डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, ओ हा, बेवकूफ पागल, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो, क्या माँ के स्ट्रिंग पकड़ के फिरते रहते हो। आज ये हालात हो गए, अनाउंस करके बच्चे माँ बाप को बता के जा रहे हैं कि चूंकि 18th बर्थडे है हमारी कल, खुदा हाफिज, अब नहीं आएंगे, हमारा पीछा ना करना। बच्चे ने 17 साल और कुछ महीने का था तो माँ बाप को खत पहले लिख दिया कि जब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ अपने 18 साल का होने का, क्योंकि अगर मैं आज घर छोड़ गया ना तो आपने पुलिस को ढूंढ कहना और पुलिस ने मुझे पकड़ लेना, चलो वापस। लेकिन यहाँ के लॉज, यहाँ की बात नहीं है, वैसे ये दुनिया में बहुत जगह ये लॉ है कि 18 साल के बाद आपका बेटा बच्ची बेटा कुछ भी कर ले आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो फिर वो 18 साल के बाद वो निकल गया घर से, नाम बदल लिया, मजहब बदल लिया, कहता नहीं मुझे नहीं रहना आपके साथ। बाहर तो इतनी गंदगी, आपको मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए ज़रूरत है आज ज़िंदगी में अपने साथ औलादों को लेकर अल्लाह की इस किताब को थामें। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है, सॉरी कोई मैं आपको एंड पे वजीफ़े नहीं दे सकती कि औलाद के लिए वजीफ़ा करें। दुआएं हैं बहुत सारी, नबियों ने मांगी, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन व अज्अलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये दुआएं पढ़ें, दुआओं में बड़ी तासीर है। सहर में जाकर सहरियों में खड़े हों, रब को पुकारें, औलाद के लिए दुआ मांगी सहरियों में, मिलेगी इंशाल्लाह। रोज़े आ रहे हैं, इफ्तारियों के वक्त पे मांगे, फ़ायदा होगा। लेकिन सिर्फ वजीफ़ों से बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला कहते हैं फ़मा युकज़्ज़िबु बादु बिद्दीन, बस नबी इसके बाद कौन है जो जजा सजा के मामले में तुमको झुठला सकता है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? यानी इतनी खुली खुली बातें सुनने के बाद अब ए नबी कौन है जो आपको झुठलाएगा? ये बताइए कि इतना प्यारा रब, इतनी प्यारी दुनिया बनाने वाला, इतना कुछ करने वाला, क्या उसकी बात को कोई झुठला सकता है? और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मखलूक में से अक्सरियत रब की बात को झुठला रही है। ऐसे खुदा फरामोशी का दौर आ गया है कि वो जैसे सूरत हशर में अल्लाह ताला कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाओ कि जो अल्लाह को भूल गए, बदले में अल्लाह ने उनको अपनी जानों से दूर कर दिया। तो ज़रूरत इस बात की कि यू टर्न लिया जाए, ज़िंदगी किसी लम्हे ख़त्म हो जाएगी, हाथ में कुछ भी ना होगा, मिन्नतें कर लेंगे, तरले कर लेंगे, वापस नहीं आएंगे। जो मर्जी कह दीजिए, हाय एक बार भेज दे, वलौ अन्ना लना करतन फनतबर्रौ मिन्हुम कमा तबर्रौ मिन्ना, एक बार अल्लाह भेज दे, हम उन सब को शक्ल नहीं दिखाएंगे जिनकी आस पे आज हमने दुनिया में गुनाह किए थे। अल्लाह कहेगा नहीं, अब नहीं हो सकता। और आप देखिए आखिरी जुमला, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, ऐसे लगता है कि इंसान का शऊर अंदर से हिल जाता है। अल्लाह के नबी के बारे में आता है हज़रत अबू हुरैरा से कि जब आप ये आयत पढ़ते थे ना अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो कहा करते थे आगे से बला वाना अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन, क्यों नहीं अल्लाह मैं इसकी गवाही देता हूँ, यानी कि आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। बाज़ जगह ये भी आता है सुबहानक फबला, ये भी कहते हैं जज़ाकअल्लाह खैर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.